एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुंह पर हाथ रखे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब सच में हो रहा है। थप्पड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि रेहान का गुस्सा फूट पड़ा। वो झटके से आगे बढ़ा और इकबाल के चेहरे पर जोरदार मुक्का दे मारा। इकबाल संभल नहीं पाए, उम्र अपना असर दिखा गई। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़े। अप्पा, नूर चीखी और उनकी तरफ दौड़ी। सुल्ताना बेगम भी घबरा कर बीच में आ गई। उन्होंने रेहान को जोर से पीछे धकेल दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उनकी आवाज कांप रही थी, गुस्से और डर दोनों से। लेकिन रेहान अब पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था। ये लड़की बाकी लड़कों के साथ चक्कर चलाएगी और मुझे मना करेगी, वो चीखते हुए बोला। बस ये सुनना था। तड़ाक, नूर का हाथ उठा और इस बार थप्पड़ रेहान के गाल पर पड़ा। मेरे अब्बा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी सख्त। पहले मैंने नहीं, इसने, रेहान सफाई देने लगा। चुप, नूर ने उसे धक्का दिया, बार बार गुस्से में। नूर, रेहान तिलमिला उठा, तमीज से बात करो। मैं ऐसे ही बात करूंगी, नूर ने आंखों में आंखें डालकर कहा। ऐसे ही बात करूंगी, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें चाहिए तो जाओ यहां से और अपने घर पर जाकर बात करो, नूर ने गुस्से में कहा था। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि जैसे वो हर शब्द के साथ दीवार खड़ी कर रही हो। तुम इस घर रहती हो, रेहान ने नूर से कहा। उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसे समझाने नहीं बल्कि तोड़ने आया हो। उसके लिए जो सिंपल सा मिडिल क्लास आदमी का घर था, उसके रेहान की नजर में वो जैसे कि बहुत छोटी चीज था। वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब धीमी थी मगर उसमें खतरनाक नरमी थी। तुम्हारी जिंदगी में लक्जरी से भर दूंगा, गाड़ी, ज्वेलरी, जिस चीज पर तुम नजर डालोगी वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, बस मेरी हो जाओ, उसने तड़प कर कहा था। हर हाल में नूर को गले लेना चाहता था। उसकी आंखों में चाहत नहीं, जुनून था। एक ऐसा जुनून जो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे नूर चाहिए थी, हर कीमत पर, अपनी बाहों में, अपने बिस्तर पर, अपनी जिंदगी में, जैसे कोई चीज हो जिसे वो हासिल कर ले। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़की अंदर से इतनी ताकतवर है कि उसकी गंदी नजरों का सामना कर सकती है। मगर नूर उसे देखकर जैसे आग बन गई थी। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से, नूर ने उसे जोर से धक्का दिया। नूर उसे अपने गुस्से से जला देना चाहती थी। रेहान एक कदम पीछे हटा मगर उसकी आंखों में कोई शर्म या पछतावा नहीं था। वो तो अपने दिमाग में नई साजिश सोच रहा था। आइंदा से यहां पर कदम मत रखना, ये मेरा घर है, समझे तुम? नूर अब लगभग चिल्ला रही थी। उसका गुस्सा अब डर को भी ढक चुका था। रेहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुझे तेरा घर है, उसने धीरे से कहा। बस यही एक लाइन थी मगर इस बार उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने नूर के अंदर हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी, क्योंकि इस घर का केस चल रहा था और रेहान को ये बात अच्छी तरह पता थी। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया हो। वो मुस्कुराया, एक ठंडी सोची समझी मुस्कान। अब शायद उसने सोच लिया था कि वो उन्हें इस घर से निकाल देगा। वो बहुत नीच और कमीना आदमी था और अब वो नूर को पाने के लिए हर हथकंडा अपनाने वाला था। इसके बारे में नूर को, इकबाल, सुल्ताना बेगम, किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि ये तो उनके दुख की शुरुआत है। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त रेहान ने एक बार फिर मुड़कर घर को देखा। उसकी नजरों में अब सिर्फ नूर नहीं थी, अब उसमें लालच था, जीत की जिद थी और एक खतरनाक प्लान की शुरुआत। और उधर नूर अभी भी गुस्से में खड़ी थी। उसे लग रहा था कि उसने उसे भगा दिया है, सब खत्म हो गया, मगर उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। बुरा वक्त ही इंसान को ताकतवर बनाता है और नूर को भी बहुत ताकतवर बनाएगा। वो दिन दूर नहीं था जब वो रेहान के सामने खड़ी होगी, डर कर नहीं, टूट कर नहीं, बल्कि उसे खत्म करने के इरादे से, और उस दिन खेल पलट जाएगा। मैं, नूर की तरफ देखता हुआ अपनी गोगल आंखों पर लगाता है और वहां से जाने लगता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ जीत गया हो या जैसे हार कर भी कोई बड़ी चाल चलाया हो। उसकी वो मुस्कान साफ बता रही थी वो खाली हाथ नहीं जा रहा, अपने दिमाग में एक नई चाल लेकर जा रहा है। नूर उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी मगर दिल में अजीब सी बेचैनी उतर रही थी, जैसे वो समझ तो नहीं पा रही लेकिन महसूस कर रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। उधर सुल्ताना बेगम ये सब देखकर खुद को संभाल नहीं पाई। वो रोने लगी थी क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी कि कोई इस तरह उनके घर आकर उनकी बेटी को इस अंदाज में हासिल करने की कोशिश करेगा। नूर ने जब अपनी अम्मी को रोते देखा तो उसका दिल भी भर आया, मगर उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे अपने अब्बा के पास आई और उनके गले लग गई। इकबाल ने तुरंत अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जैसे उसे अपनी बाहों में लेकर हर डर से बचा लेना चाहते हों। मैं हूं ना, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज में यकीन था, हौसला था, उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और आज ये साफ दिखाई भी चुका था कि उनकी बेटी ने अपनी इज्जत के लिए हर चीज को ठुकरा दिया था। ये सच था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। फैजान अकेडमी में अलग परेशान हो रहा था। वो अपनी क्लासरूम में एंटर होने से पहले ही रुक गया था। दिल अजीब सा बेचैन था, जैसे कुछ गलत होने का एहसास उसे भी हो रहा हो। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया मगर सादिया खुद एक अलग तकलीफ से गुजर रही थी। उसके पास भी अपना दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसने कभी किसी लड़की की तकलीफ नहीं समझी तो आज उसकी तकलीफ कौन समझता। जिंदगी हिसाब जरूर लेती है, अल्लाह तो सबके हिसाब लेता है। जिसकी गलती छोटी होती है उसका हिसाब जल्दी खत्म हो जाता है, और जिसकी गलती बड़ी होती है उसे लंबे हिसाब देने पड़ते हैं। फैजान बार बार फोन ट्राई कर रहा था मगर कोई जवाब नहीं। उसने फिर नूर को कॉल किया मगर नूर का फोन भी बंधा रहा था। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी, दिल घबरा रहा था। उसे अपनी बहन की भी फिक्र हो रही थी, चाहे उसकी बहन को उसकी फिक्र नहीं थी, और उसे नूर की भी फिक्र हो रही थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वो उसे रोक भी नहीं सकता था। फैजान ने रेहाना बेगम को फोन लगाया था क्योंकि उसे हर हाल में उनके बारे में जानना था जिनकी वो फिक्र कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, फैजान ने फोन करते ही कहा था। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट छिपी हुई थी। ताई अम्मी, आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? उसने पूछा। असल में वो सादिया और नूर के बारे में पूछना चाहता था मगर सीधा नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसने इस तरह से बात शुरू की जैसे बस हालचाल पूछ रहा हो। उधर से कुछ पल खामोशी रही, फिर रेहाना बेगम की आवाज आई। सब खैरियत है, तुमने इतनी सुबह सुबह सबकी खैरियत का ख्याल कैसे आ गया? उनके लहजे में हल्की सी हैरानी थी क्योंकि कई दिन हो चुके थे फैजान को वहां से गए हुए और वो वापस लौटकर भी नहीं आया था। फोन जरूर आया था नासिर की मौत के वक्त, मगर उसके बाद बस खामोशी। घर में किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो लड़का इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। उन्हें तो नहीं पता था कि वो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है और एक दिन ऑफिसर बनकर उनके सामने आएगा। फैजान ने हल्की सी सांस ली जैसे अब असली बात कहनी ही पड़ेगी। कई दिनों से सादिया को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो मेरा फोन नहीं उठा रही, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब साफ चिंता थी। मुझे उसकी फिक्र हुई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं वो कैसी है। इतना कहते कहते उसका दिल और तेज धड़कने लगा था जैसे उसे डर हो कि कहीं जवाब वैसा ना हो जैसा वो सुनना नहीं चाहता। और साथ ही
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।